یسعیاہ کی کتاب کا 58 باب ہے، اس کی 5 سے 8 آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے رو پوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانے پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ شکر ہوں قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا، اور اس مہینے میں 14 تاریخ سے عالمگیر کلیسیا میں لینٹ سیزن شروع ہوگا، روزوں کا موسم شروع ہوگا۔ 40 دن جو مقرر کیے گئے ہیں، صدیوں سے یہ کلیسیائی روایت ہے رہی ہے کہ ایسٹر سے پہلے 40 دن اتواروں کو چھوڑ کر 40 دن آبزرو کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں روزوں میں۔ اور عالمگیر کلیسیا میں تمام مین لائن چرچز، تمام کلیسیائیں بلا اختلاف ان دنوں میں روزوں کی مشق کرتے ہیں، اور ہر برس جب روزے شروع ہونے کو ہوتے ہیں تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے لیے روزے رکھنا ضروری ہے؟ کب سے شروع کر کے کب ختم کرنا ہے؟ کس طرح کا روزہ؟ اور ان روزوں سے جڑی بہت سی باتیں۔ اور تقریباً ہر برس میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار سال میں روزے شروع ہونے سے پہلے یا روزے شروع ہوتے ہی ایک بار پھر سے روزوں کے متعلق تعلیم کی یاد دہانی کروا دی جائے کہ خدا کا کلام ہمیں روزے کے متعلق کیا تعلیم دیتا، ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سو آج ہم غور کریں گے خدا کے کلام میں سے روزے کے متعلق جو ہمیں تعلیم ملتی ہے اس پر، فاسٹنگ ان دا بائبل، بائبل مقدس میں روزہ۔ پہلی بات، پرانے عہد نامے میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے، اور پرانے عہد نامے کی زبان جو عبرانی ہے اس میں لفظ صوم ہے، اسی سے عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب منہ ڈھانپنا، کھانے سے پرہیز کرنا، اپنے منہ کو روک کے رکھنا۔ نئے عہد نامے میں جب یہ روزہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے لفظ نیسٹس استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی ہے کھانے سے پرہیز کرنا۔ شریعت میں صرف ایک روزے کا حکم ہے، وہ بھی یوم کفارہ، دا ڈے آف اٹونمنٹ، جب سردار کاہن ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے جانور کا خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں عہد کے صندوق پر اس کا خون چھڑکتا ہے ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس دن کے لیے حکم تھا کہ اس دن اپنی جان کو دکھ دیا جائے، روزے میں گزارا۔ بنی اسرائیل روزوں کی مشق کیا کرتے تھے، پہلا دن جو مناتے تھے وہ روزے کا تھا، یوم کفارہ۔ احبار کی کتاب 16:29 آئے، دوسرا روزہ وہ جو ساری قوم مل کر رکھتے تھے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ، یروشلم پر چڑھائی ہوئی تھی، نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے اس دن کی یاد منائی کہ اس دن ہمارے شہر پر، ہمارے ملک پر، خداوند کے مقدس شہر پر غیر قوم نے یلغار کی تھی، اس لیے وہ ہمارے لیے سوگ کا دن ہے، دا ڈارک ڈے، یوم سیاہ ہے، اس دن وہ روزے میں گزارتے تھے اس کی یاد میں۔ फिर तीसरा चौथे महीने की 9वीं तारीख जब यरूशलेम पर कब्जा हो गया, उस दिन की यादगार भी वो मनाते थे कि उस दिन यरूशलेम पर कब्जा हो गया मुकम्मल, तो उस दिन को भी वो शोक के दिन के तौर पर, दुख के दिन के तौर पर रोजे में मनाते थे। और फिर चौथा रोजा जो वो रखते वो 5वें महीने की 10वीं तारीख को था, जिस दिन हैकल को बर्बाद किया, हैकल ढाई गई, तो वो उस दिन की भी याद मनाते थे शोक के तौर पर, गम के तौर पर, दुख के तौर पर, और वो साल ब साल बनी इसराइल उस दिन को रोजा रखते थे। ज़करिया 8वां बाब 19वीं आयत, यर्मिया 52वां बाब है 12वीं से 15वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है कि 5वें महीने के 10वीं तारीख का रोजा या 5वें महीने का रोजा। ये बनी इसराइल कौम इज्तमाई तौर पर सारे मिलकर रोजा रखते थे। फिर कुछ शख्सी या इंफरादी रोजे जो एक कोई एक शख्स रखता रहा है वो बाइबल में हमें मिलते हैं। मूसा ने 40 दिन और रात पहाड़ पर 2 बार गुजारे थे बगैर खाए पिए। एलिया ने 40 दिन बगैर खाए पिए गुजारे। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन बगैर खाए पिए गुजारे। दानियल ने 3 हफ्ते यानी 21 दिन रोजा रखा था। दाऊद ने 1 हफ्ता 7 दिन उसने रोजे में गुजारे। जब लड़का पैदा हुआ बदसबा से बीमार पड़ गया तो खुदा को राजी करने और मनाने के लिए, उसकी जान मांगने के लिए, उसकी जिंदगी मांगने के लिए उसने 1 हफ्ता रोजे में गुजारा। हन्ना जो नए अहदनामे में जिसका जिक्र है, जो जब खुदावंद यीशु मसीह को उसके माँ बाप हैकल में लेके आते हैं और शमाऊन रासबाज वहाँ मिलता है और फिर हन्ना वहाँ मिलती है जो बेवा थी 84 बरस से और रोजों में रहकर इबादतें किया करती थी, दुआएं किया करती थी। और मुकदस पौलुस का उसके रोजे का जिक्र है, अमाल 9वां बाब है और 9वीं आयत। ये शख्सी इंफरादी पर्सनल इंडिविजुअल प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग रोजे रखे गए, एक शख्स ने जब रोजे रखे। सो कौम के तौर पर भी और शख्सी तौर पर भी रोजे की मिसालें बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। प्रैक्टिस ऑफ कॉरपोरेट फास्टिंग इज्तमाई तौर पर रोजे सिर्फ बनी इसराइल कौम ने नहीं रखे, और भी लोगों ने मिलकर इज्तमाई तौर पर, पूरी कौम ने मिलकर, ये शहर ने मिलकर, पूरी नेशन ने, सल्तनत ने, उम्मत ने मिलकर रोजे रखे। आस्तर और यहूदी कौम ने जब वो सूसन में थे 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर ने पैगाम भिजवाया कि जब सारे यहूदियों से कहो जो सूसन में है कि 3 दिन तक रोजा रखे, मैं भी और मेरी सहेलियां भी रोजे में ठहरेंगी, मिलकर रोजा, इज्तमाई रोजा। नैनवा के लोग जब यूना को भेजा गया मुनादी करने के लिए कि 40 रोज बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तौबा कर ले तो ठीक है, उन्होंने मिलकर फाका किया, रोजा रखा, टाट उड़ा और तौबा। बनी इसराइल अक्सर रोजा रखते थे, हमने पीछे उनकी मिसाल देखी है कि यौम कफारा पर, यरूशलेम पर चढ़ाई के दिन की याद, यरूशलेम के पर कब्जे के दिन की याद, हैकल की बर्बादी के दिन की याद, ये प्रैक्टिसेस वो करते थे, इन दिनों को वो मनाते थे, सब मिलकर एक रोजे, एक दिन रोजे का मुकर्रर करते थे। और फिर इब्तदाई कलीसिया रसूलों के जमाने में भी रोजा रखा जाता और मिलकर पूरी कलीसिया रोजे रखा करती थी। अमाल की किताब का 13वां बाब है और 2री और 3री आयात में मिलता है कि सब ने रोजा रखा। सो मिलकर रोजा रखना, पूरी कौम, पूरी जमात का मिलकर रोजा रखना, यह सिर्फ बनी इसराइल में नहीं, गैर कौमों में भी हुआ। जब उन पर खुदावंद का पैगाम पहुंचा, नैनवा के लोगों ने रखा, आस्तर और यहूदियों ने सोसन में रखा, बनी इसराइल रखा करते थे, और इब्तदाई कलीसिया ने भी, रसूलों में भी ये प्रैक्टिस मौजूद थी कि मिलकर रोजे रखा करते थे। अब सवाल आता है कि रोजा कितने वक्त का, कितनी मुद्दत का, रोजे का ड्यूरेशन क्या है, दौरानिया क्या है, टाइम क्या होगा रोजे का। बाइबल क्या हमें बताती है कि रोजा कितनी मुद्दत का होता रहा है, 40 दिन और रात का। तो खुदावंद यीशु मसीह, एलिया और मूसा, इन तीनों की जिंदगी से हमें दिखता है कि 40 दिन और रात के एक ही रोजे, 40 रोजे नहीं, एक रोजा, 40 दिन और रात का। एक रोजा। फिर रोजा दानियल ने जो रखा वो 21 दिन का था, 3 हफ्ते 21 दिन और रात, 21 रोजे नहीं, एक रोजा 21 दिन का, इतना लंबा। फिर एक रोजा 7 दिन का जो दाऊद ने रखा, 1 हफ्ते भर का रोजा। फिर 3 दिन और रात का जो आस्तर उसकी सहेलियों ने और यहूदी कौम ने सोसन में रखा। और रमाल बाब नंबर 9 और आयत नंबर 9 में ये साउल जो बाद में पौलुस बना उसके हवाले से भी लिखा है कि उसने 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। फिर एक पूरा दिन, अहबार 16 बाब है 29वीं से 31 और 31वीं आयत, एक दिन रोजे का, एक दिन यौम कफारा, एक ही दिन था, 24 घंटे का रोजा। सुबह से शाम तक कुजात की किताब में जजेस में 20वां बाब है और 26वीं आयत है, सुबह से शाम तक का रोजा। सो 40 दिन और रात के रोजे से लेकर सुबह से शाम तक के रोजे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। 40 दिन और रात, 21 दिन और रात, 7 दिन और रात, 3 दिन और रात, 1 दिन और 1 रात, और फिर 1 दिन सुबह से शाम। सो बाइबल में ये सारे दौरानिए, सारे वक्त लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में ये प्रैक्टिस रही 40 दिन से 1 दिन तक। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा के साथ कितनी कमिटमेंट करते हैं कि मैं सुबह से शाम, सुबह से अगली सुबह, दोपहर से अगली दोपहर, शाम से अगली शाम, या 3 दिन या 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन, हम कितने दिन का रोजा रख सकते हैं, ये हमारी अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए खुदा के साथ। सुबह से शाम तक भी रोजा है, शाम से शाम या सुबह से अगली सुबह तक भी, पूरे 24 घंटे आज पहला जिसे हम कहते हैं आज पहल का, वो भी रोजा है। और नॉर्मली हमारी कलीसियाई रिवायतों में 24 घंटे का रोजा शुमार किया जाता है, एक शाम से दूसरी शाम। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कमिटमेंट पे कि आप खुदा के साथ कितना वक्त अपनी जान को दुख देकर, अपनी खुशी के कामों से परहेज करके, अपने बदन को खुराक और पीने की चीजों से परहेज करते हुए कितना वक्त खुदा के पास साथ गुजारते हैं। और फिर आगे अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे कि मकसद और रोजे का तरीकाकार क्या होना चाहिए, रोजों के मकासद हैं। 40 दिन रोजे रख लेना के लिए हमने रोजे रखे, पर किस लिए रखे रोजे हैं, किस लिए रखे रोजे हैं? बचपन से सुनते आए रोजे हैं, हम भी रोजे रख रहे हैं, किस मकसद के लिए रखे कुछ पता नहीं है, रोजे हैं इसलिए रख लिए। रोजा बगैर मकसद के नहीं होता, सिर्फ एक खाली प्रैक्टिस नहीं है कि रोजे हैं तो हम भी रोजा रख लेते हैं जी, खाना 2 टाइम का 3 टाइम का 1 टाइम का छोड़ दिया और रोजा हो गया। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जब भी कहीं भी, बाइबल में कहीं भी किसी ने रोजा रखा है, चाहे वो सुबह से शाम तक का था या वो 40 दिनों रात का था, वो बगैर मकसद के, किसी एक एम टारगेट गोल के बगैर नहीं था। क्या क्या मकासद बाइबल में हमें नजर आते हैं? पहला मकसद तौबा के लिए। नीनवा के लोगों ने जो रोजा रखा था यूना की मुरादी को सुनकर, वो तौबा के लिए था कि अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ, खुदा तुम्हें बर्बाद करने को उन्होंने रोजा रखा, टाट उड़ा, तौबा की, खुदा ने माफ। दानियल बाब नंबर 9 और 3 से 4 आयत, अपने गुनाहों, अपनी कौम के गुनाहों की माफी के लिए तौबा। नहमिया 9 बाब है और 1-2 आयत, अपने और अपने कौम, अपने घराने के गुनाहों की माफी के लिए रोजा, तौबा के लिए, खुदा के सामने फरियाद करने के लिए कि मुझसे, मेरे खानदान से, मेरी कौम से तेरे खिलाफ गुनाह हुए हैं, इसलिए मैं रोजे में ठहरता और फरियाद करता हूं या फरियाद करती हूं कि तुम मुझे, मेरे खानदान को, मेरी कौम को मुआफ करो। मातम, जब मौत हो जाती है, जब शहादतें होती हैं, जब रोने का, दुख का, मातम का वक्त आता है, तो रोजा रख लिया जाता है। अज़रा में आठवां बाब है और 21वीं आयत है, सीधी राह तलब करने के लिए। खुदा का बंदा अपने लोगों को यह मशवरा देता है, आओ हम रोजे की मुनादी करें और रोजा रखें, खुदा से अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए सीधी राह तलब करें। जब हमें कुछ सुझाव नहीं देता, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता कि हम जिंदगी में क्या करें, हम इस मकसद के लिए क्या करें, ये मेरा एक काम है रुका हुआ है, मैं उसे कैसे पूरा कर सकता हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मेरी अकल से बाहर हो गई है बातें, हालात मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मैं क्या करूं, मैं किस रास्ते पर चलूं। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोजा रखो, खुदा से सीधी राह तलब करो, उससे कहो तू मुझे राह दिखा मेरे लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, जिसके बाल बच्चे नहीं वो अपने खानदान के लोगों के लिए। खुदा से सीधी राह तलब कर सकता है कि मैं या मेरे मां बाप या मेरे बहन भाई या मेरी औलाद, हम किस राह पर चलें कि हमें कामयाबी मिलेगी, हम इस मुसीबत और मुश्किल से निकल आए। बनी इसराइल को अज़रा की किताब 8वें बाब और 21वीं आयत में सलाह दी गई, खुदा से सीधी राह तलब करने के लिए रोजा रखो। हम भी जिंदगी में जब मुश्किलात में पड़ते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, किस राह पर चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं, रोजा रखें, खुदा से सीधी राह तलब करें। बड़े काम की तैयारी के लिए आस्तर ने बहुत बड़ा काम करना था, बादशाह के सामने जाना था, अपनी कौम को बचाने के लिए दरखास्त करनी थी, और बादशाह के सामने बगैर बुलाए जाना मौत को दावत देना, बहुत बड़ा काम था, और अपनी जान हथेली पर रख के जाना था। उसने बहुत बड़े काम पर जाने से पहले, बहुत बड़े चैलेंज को कबूल करने से पहले 3 दिन और रात रोजे में गुजारे। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में उसने जमीनी खिदमत शुरू करने से पहले अपने आप को अलग किया, 40 दिन और रात रोजे की प्रैक्टिस की। बहुत बड़ा काम था जो उसे करना था उसकी तैयारी के लिए। खुदावंद यीशु को तौबा की जरूरत नहीं थी, उसको सीधी राह तलब करने की जरूरत नहीं थी, खुदावंद यीशु को किसी चीज पर मातम करने की जरूरत नहीं थी, खुदावंद को कोई फरियाद करके कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, वो तो सबको देने वाला, लेकिन उसने हमें पैटर्न दिया, हमें सिखाया, हमें उसने नमूना दिया है कि बड़े काम करने से पहले, बड़ी मुहिम पे जाने से पहले, जिंदगी में बड़े मार के सर करने से पहले तैयारी के लिए रोजे में ठहरो, खुदा से ताकत कुव्वत और उसकी मदद तलब करो। शिफात के लिए टू इंटरसीड, जब दूसरे किसी मुसीबत तकलीफ दुख में हो, जब कोई बीमार हो, लाचार हो, परेशान हाल हो, दुख में मुब्तला हो, तो उसकी मदद हम खुद तो नहीं कर सकते कि हम उसकी बीमारी को ले लें, हम उसकी मुसीबत में खुद उतर आए और उसको निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी को दुख में देखें और उसकी मदद करना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज दिस, यू ऑब्जर्व फास्ट फॉर हिम और हर। आपके लिए बेहतरीन अमल यह है कि आप उसकी मदद रोजे के साथ करो, रोजे में ठहर कर उसके लिए दुआ करो, उसके लिए शिफात करो, उसके लिए मिन्नत करो खुदा से कि खुदावन हमारा ये अजीज, हमारी ये अजीजा बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल, बड़ी तकलीफ में है, तू रहम। शिफात के लिए इंटरसीड करने के लिए, दूसरों के लिए खुदा के सामने फरियाद करने के लिए आप रोजे में ठहर सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि खादिमों को मखसूस जब किया जाता है, कमाल की किताब में 13वां बाब है और उसकी दूसरी और तीसरी आयात है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुछ ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। जब खुदा के खादम मखसूस किए जाते हैं, और कलीसियाओं में यह रिवायत है कि जिस दिन काहिन, पासवान, पास्टर्स ऑर्डेन किए जाते हैं, उनको मखसूस किया जाता है, तो उस दिन रोजे में वो ठहरे हैं। रोजा चल रहा होता है जब उनकी मखसूसियत होती है खुदा के खादिम, और कई कलीसियाओं में जिनमें ये अच्छा इंतजाम होता है कि हॉस्टल्स होते हैं या उनके पास गेस्ट हाउसेज होते हैं, वो कैंडिडेट को कि जिसने पास्टर बनना है, जिसने काहिन प्रीस्ट के ऑफिस लेना है, उसकी मखसूसियत होनी है, वो उनको अलग उस जगह पे अकेले तनहा छोड़ देते हैं कि आप यहीं ठहरो, रोजे में ठहरो, दुआ में ठहरो, ताकि आप दूसरे इंसानों से ना मिलो, बाहर की दुनिया से अलग होकर इस जगह आप रुको, ठहरो और दुआ में वक्त गुजारो, रोजे में वक्त गुजारो, और यहां से आपको लिया जाएगा और उस चर्च में ले जाया जाएगा जहां आपकी मखसूसियत है। खुदा के खादमों की मखसूसियत के लिए रोजा रखा जाता है। एक बात याद रखने की जो बड़ी जरूरी है हमारे लिए, हमें रोजा रखने की जरूरत है। खुदा यसु से सवाल किया गया, तेरे शागिर्द रोजा नहीं, जब तक दूल्हा साथ है बराती रोजा नहीं रखते, लेकिन वक्त आएगा कि ये रोजा रखते। खुदा यसु मसीह ने पहाड़ी वाज में ये तालीम भी दी, जब तुम रोजा रखो। अगर हमें रोज रोजे की जरूरत ना होती तो खुदावंद यह तालीम ना देता, बल्कि साफ सरीखन कह देता कि नहीं, इन्हें रोजे की जरूरत नहीं और ना आइंदा कभी होगी, और ना वो तालीम देता कि तुम जब तुम रोजा रखो। उसने कहा अभी दुल्हा साथ है तो बारातियों को रोजा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये रोजा रखेंगे। खुदावंद ने यह तालीम भी दी, जब तुम रोजा रखो। हमारे लिए कोई मखसूस दिन नहीं है कि जी इसी में रोजा रखना है तो होगा कबूल, इसमें छूट गया तो गुनाह मिलेगा, किसी और दिन रख लिया तो वो भी गुनाह मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 365 दिनों में से किसी भी दिन खुदा के हजूर रोजे में ठहर के फरियाद कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मकसद क्या है। बिना मकसद फाका करना ये डाइटिंग है, रोजा नहीं। ये स्मार्ट होने के लिए रोटी छोड़ने वाला कमल जो है ना, इसे डाइटिंग कहते हैं। ये बिना मकसद के जो रोजा है फाका, वो डाइटिंग है, वो रोजा नहीं है। दैट्स नॉट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वो रूहानी कोई फायदा नहीं है उसका, जिस्मानी जरूर है कि आप पतले हो जाते, कमजोर हो जाते, रूहानी फायदा कोई नहीं है। मकसद के साथ रोजा रखो। हमें रोजा रखने की जरूरत है। अगर खुदावंद यसु को जरूरत पड़ गई रोजा रखने की, मैं फिर गुजारिश करूं कि वो तो खुद खुदा है, उसे किसी चीज की हाजत और जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने नमूना देने के लिए हमें उस सारी चीजें की जो जमीन पर वो इंसान के तौर पर करता रहा। वो रोया, वो हंसा, उसने खाया पिया, दुआ की, रोजे रखा, इबादतों में गया हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए। नहीं तो वो तो खुद माबूद है जिसकी प्रस्तुति होती है, उसको तो इबादत करने की जरूरत नहीं, वो तो दुआओं का सुनने वाला है। उसने हमें नमूना दिया कि दुआ कैसे करें। तुम्हें दुआ करने की जरूरत है, तुम्हें रोजा रखने की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें कैसे इस मश्क से गुजरना है। सो हमें रोजा रखने की जरूरत है अपने लिए सीधी राह तलब करने के लिए, मुआफी के लिए, मुसीबतों में जब घिरे हों आजादी पाने के लिए, बीमारियों से शिफा पाने के लिए, दूसरों को मुसीबतों बीमारियों दुखों में देखे तो उनकी मदद के लिए हमें रोजे रखने की जरूरत है। अब ट्रू फास्टिंग, हकीकी रोजा जो बाइबल मुकद्दस में हमें सिखाया गया, यसाया में तो बड़ी वाज़े तौर पे कहा कि तुम्हारे फाके और तुम्हारा भूखा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कबूल नहीं है, ये वो रोजा नहीं जो मैं पसंद करता हूं। क्या हकीकी रोजा जो मुझे पसंद है ये नहीं? हकीकी रोजा ट्रू फास्टिंग क्या है? अपनी खुशी छोड़ना। रोजे में रहकर अगर हमने अपनी खुशी के ही काम करने हैं, सिर्फ अपनी ही खुशी ढूंढनी है, अपनी ही सहूलतें ढूंढनी है, तो वो रोजा नहीं। हकीकी रोजा यह है कि जिसमें हम अपनी खुशी का काम ना करें, जिस काम से हमें ज्यादा खुशी मिलती है उसको तर्क करें, जिस काम में हमारा मन ज्यादा लगता है, जिसमें हमारा शौक ज्यादा है, हमारी दिलचस्पी ज्यादा है, उसको छोड़ दें। रोजे में है सारा दिन मैच देख के गुजार दिया तो ये भी कोई रोजा हुआ? रोजे में है सारा दिन सो के गुजार दिया, ये भी कोई रोजा हुआ? रोजा रखा हुआ है और सारा दिन कमरे में बंद होकर जनाब मोबाइल ऑन कर दिया और चैटिंग और मैसेजिंग और वीडियोस और सब कुछ हम करते रहे, भाई रोजे में है इसलिए काम वाम तो करना नहीं, चलो लेट्स डू इट। तीन चार बार बैटरी हमने एम्प्टी की और फिर चार्जर मुसलसल लगा, ये रोजा नहीं है। हकीकी रोजे में आप अपनी खुशी के कामों को छोड़ें, अलग हो जाए उन कामों से कि जिनमें आप पहले महजूज होते हैं, लुत्फंदोज होते हैं, आपको खुशी मिलती है। अपनी जान को दुख देना हकीकी रोजे में शामिल है। यह क्या हुआ? अच्छा चलो दोपहर को खाना तो अक्सर छूट जाता है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। हां, रोजा उस वक्त तक रखें जब तक आपके बदन को महसूस ना होना शुरू हो जाए कि हां मैं दुख सह रहा हूं। हम सफर में होते हैं, सुबह नाश्ता करके जाते हैं, बहुत लंबा सफर हो जाता है, हल्का फुल्का कहीं एक दो घूंट पानी पी लिया, थोड़ा सा जूस पी लिया, खाना नहीं खाया। कभी होता है कि रात को घर पहुंच के ही खाते हैं। अक्सर हो जाता है कि काम में मसरूफ होते हैं, सुबह नाश्ता किया हुआ है और शाम 5 बज गए 6 बज गए। अक्सर हो जाता है। रोजे में अगर हमने खुराक छोड़ी हुई है तो हमारी जान को दुख महसूस होना चाहिए उसका। हमें जब तक शिद्दत से भूख का एहसास ना हो मेरी दानिश में, वो रोजा नहीं है। जब तक आपके बदन को अंदर से महसूस ना हो कि तू कमजोर पड़ गया है, तुझे खाने की जरूरत पड़ी है, और 40 दिन के बाद जब उसे भूख लगी, खुदावन यीशु मसीह के साथ ये हुआ, चलता रहा 40 दिनों बाद बगैर खाए पिए, उस वक्त तक जब तक उसके बदन ने उसको अंदर से ना बता दिया कि अब तुझे जरूरत। अगर रोजा रखा हुआ हमें पता ही नहीं चलता, अक्सर सुनते हैं पता ही नहीं लगता रोजा, सुबह शाम तक फिनिश, वो रोजा नहीं है। फिर बढ़ाओ अपना टाइम। अगर सुबह से शाम तक का रखा हुआ है तो उसको सुबह से सुबह तक का कर दो, शाम से अगली शाम तक का कर दो। बदन को महसूस होना चाहिए कि दुख मिला है। अगर दुख नहीं है उसमें, उसमें रोजा नहीं है। बड़ा दुख मिलता है अगर मोबाइल फोन छीन लिया जाए ना जॉनाथन से, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। 10 मिनट के लिए भी उसका दिल नहीं करता कि उसका फोन उससे छीन लिया जाए। दुख होता है ना। रोजा रखा हुआ है तो अपनी जान को दुख दें कि मेरा मोबाइल सिर्फ कॉल्स के लिए होगा, आज किसी और काम के लिए। रोजा रखा हुआ है तो आज मैं अपने आप को वॉलीबॉल के मैच से, कबड्डी के मैच से, फुटबॉल के मैच से, क्रिकेट के मैच से दूर रखूंगा। अगर रोजा रखा हुआ है तो आज मैं थोड़ी कॉल्स, जो वीवा फ्री मेरा पैकेट चल रहा है, मैं उसको रिड्यूस करूंगा, सिर्फ अपने खानदान के लोगों से जरूरी हद तक बात करूंगा कि आप खैरियत से हैं, हम ठीक हैं, थैंक यू, बाय। जिंदगी में जो मामूल हमारा है कि 9 से 12 के शो, शाम 7 से 9 बजे तक के शो, टीवी चैनल्स के शो, सीरियल्स, सीरीज, टॉक शोज, जो भी हमारा रोज का मामूल है, हम कंफर्टेबल होते हैं, 3 घंटे की मूवी में भूख भी नहीं लगती। दुख दे अपनी जान को, वो रोजा है। खाना पीना छोड़ना भी रोजे में शामिल है। ये नहीं होना चाहिए जी मैंने सिर्फ ना आग की बनी हुई चीज से परहेज किया हुआ है, भाई कहीं नहीं मिलता ये कि आग की बनी हुई नहीं खानी, बाकी सेब, अमरूद, तरबूज, मैंगो, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, फ्रूट्स सब कुछ खा लेने, आग की बनी हुई नहीं खानी। भाई रोजा क्या जिसमें अपने बदन को दुख नहीं मिला, जिसमें खाना पीना नहीं छोड़ा हुआ। यीशु ने सिलेक्टिव रोजा नहीं रखा था कि चलो मैं कुछ ना खाऊं ना पीऊं, चलो ये चीजें ले लिया। अगर रोजा है तो कामिल है, मुकम्मल है। कई लोग 40 दिनों रात का यीशु के पैटर्न पे, मूसा के पैटर्न पे, एलिया के पैटर्न पे रोजा रखते हैं, लेकिन वो एक काम करते हैं कि वो जूस लेते हैं हर 24 घंटे के बाद, एक लिमिट रखी होती है उन्होंने। इस तरह उनका रोजा एक 40 दिन का नहीं हो जाता, उनके रोजे एक एक दिन के 40 हो जाते हैं। लेकिन वो खाते कुछ नहीं है, जूस ले लेते, एक जूस का ग्लास 24 घंटे के बाद। लेकिन अगर खाना पीना सिलेक्टिव फूड हमने ली हुई है तो ये भी मुनासिब नहीं। अगर रोजा है तो कामिल हो, सुबह से शाम करने के लिए, शाम से शाम कर लीजिए, सुबह से अगली सुबह कर लीजिए, लेकिन जब दुख मिले तब समझे कि अब रोजा है। गुनाह छोड़ना भी बड़ा जरूरी है, रोजा रखा हुआ है और सारे बुरे काम कर रहे हैं, अभी मूल रोजा है बाजी को हटना चुप नहीं बोलना, सुना है ना। ये अक्सर हमारे मुआशरे में दुकानदार ये काम करते हैं, रोजा बस हमारे पास लाइसेंस हो जाता है, लाइसेंस टू सिन, रोजा रखा हुआ है ना मेरा इतबार नहीं कर रहे। रोजा रखा है तो गुनाह भी छोड़ो, वो रोजा कबूल नहीं होगा जिसमें हम अपनी मर्जी से सारे काम करते रहें और कहने को रोजा रखा। हलीम आजिज और फरोतन होना है, वो रोजा कैसा है कि जिसमें हम दूसरों को जनाब गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा मैं रोजे से हूं, मुझे ही काम बोले जा रहे हो, बच्चों को जनाब खूब धमकियां दी जा रही हैं और जीवन साथी को भी धमकाया जा रहा है और मां बाप को, बहनों भाइयों को, दोस्तों को, काम की जगह पर हर बंदे को हमने जनाब छिनक के रखा हुआ। हलीमी आजजी और फरोतनी आनी चाहिए, अगर रोजा रखा हुआ है तो रूह को झुक जाना चाहिए, हमारे घमंड और तकब्बुर को झुक जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, खुदा के सामने आजिज और हलीम हो रहे हैं कि ऐ खुदा जब तक तू मेरी फरियाद ना सुन ले, इसे मंजूर ना कर ले, मैं अपने आप को तेरी नेमतों से भी दूर रखता हूं। एक बुजुर्ग है, उन्होंने हिकायत कही है, गुनाह करने का इरादा हो तो खुदा की दुनिया से बाहर जाएगा, जहां खुदा का इख्तियार ना हो, जो चीजें खुदा ने बनाई ना हो। कानून है ना, किसी की चार दीवारी के अंदर आप उसके खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो हदूद का मुकदमा हो जाता है उसमें, कि जी आपने किसी की हदूद में, किसी की बाउंड्री में जाकर उनके खिलाफ ऑफेंस किया है, उनको धमकाया, गालियां दी या हाथ लगाया या उनको मारा या कुछ भी किया, तो ऑफेंस, सिन इज द ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, गुनाह खुदा के खिलाफ जुर्म है, तो वहां जाके करो जहां खुदा की हुकूमत, उसका इख्तियार, उसकी बादशाहत, उसका दायरा कार नहीं है। खुदा को मनाना है तो उसको बोलो कि मैं तेरी नेमतों को तब तक नहीं खाऊंगा, उस समय तक, उस वक्त तक मैं अपने आप को तेरी नेमतों से दूर रखता, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता समझता कि तेरी नेमतों से लुत्फंदोज हो सकूं जब तक के तू मेरी फरियाद न सुन। भूख हड़ताल करते हैं ना लोग, अन्ना हजारे, गांधी साहब और कई लोगों ने तारीख में बड़ी भूख हड़तालें मशहूर हुई हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं, वो अपने मालिकों के खिलाफ होती हैं कि जी आप हमारी मांगे पूरी करो। वो भूख हड़ताल होती है जब हम रोजा रखते हैं, हम खुदा के सामने आजिज़ी से कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी, मैं कोई खुशी का काम नहीं करूंगा, मुझे बहुत दुख है इस बात पे, जब तक कि तू मुझे मेरी फरियाद का जवाब न दे। ये बड़ी एक स्पिरिचुअल सी भूख हड़ताल होती है जो हम खुदा को मनाने के लिए करते हैं, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। सो हलीमी, आजिज़ी और फरोतनी से खुदा के सामने और इंसानों के बीच में रहें, ये रोजे में होना चाहिए। हकीकी रोजा यह है कि दूसरों की मदद की जाए। क्या ये वो रोजा नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? यशायाह 58 में बाब है, जरा उसे अपने सामने खोल के रखिए। क्या ये वो रोजा नहीं जो मैं चाहता हूं? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें? हमने रोजा रखा हुआ है और दूसरों को हम दबा रहे, उन्हें शिकंजे में कस रहे, उन्हें सजाएं दे रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, हम किसी को मुसीबत और मुश्किल में देख रहे हैं और उसकी कोई मदद नहीं कर रहे क्योंकि मेरा रोजा है। खुदा यूसुफ ने एक सामरी वाली तमसील बताई थी कि वो अदमुआ पड़ा था, उसे डाकुओं ने लूट लिया था और एक काहिन और लावी भी वहां से गुजरे थे, उन्होंने उसकी कुछ मदद ना की थी। दूसरों की मदद करें, रोजा रखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल नरम है, आपको मांग रहे हो किसी और से कि मेरी मदद कर, और किसी और को देखते हो मदद की तलब में, तो उसको मदद अगर नहीं दोगे तो यकीन करो कि तुम्हें भी मदद नहीं मिले। रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा, और इसको अगर हम ये कहें कि मदद करो, तुम्हारी भी मदद की जाएगी। So, हम रोजे में दूसरों की मदद के लिए दस्तियाब रहें, ये ना कहें मेरा रोजा है मैं तो जा ही नहीं सकता बाहर, मैं तो उठ ही नहीं सकता, मैं तो दुआ में ठहरा हुआ हूं, हमसायों के घर को आग लग गई और आप दुआ में सजदे में पड़े हुए हैं। खुदा की मर्जी के तालिब खुदा से दरख्वास्त करें, हकीकी रोजे में खुदावंद मेरा ये मामला है, ये परेशानी है, इसमें से मुझे निकलना है, तेरी मर्जी मैं चाहता हूं, तू मुझे बता तेरी क्या मर्जी है, मैं क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं, क्या कदम उठाऊं, कौन सा काम करूं मैं। खुदा की मर्जी का तालिब होना हकीकी रोजे में जरूरी है, अपनी मर्जी नहीं थो, अपनी मर्जी से दस्तबरदार होना है, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये यीशु ने पैटर्न दिया है, उसने सिखाया है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दुआए रब्बानी में भी यही हम पढ़ते हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। और रोजे 40 रख लेते हैं, नीयतें हम ठीक नहीं रखते, किसी ऐसे मकसद के लिए रोजा रख लेते हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ होता है, तो नीयतें अच्छी रख के अगर हम रोजे रखेंगे तो वो हकीकी रोजे होंगे, हकीकी फास्टिंग होगी, अपने अपने जात, अपने मन को अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अगर हम रोजे रखते हैं, अपनी लज्जतों के लिए हम रोजे रखते हैं, तो वो हकीकी रोजे नहीं है। हकीकी रोजा यह है जिसमें ईमान भी हो। बड़ी पुरानी बुजुर्ग औरत की मिसाल है, सारी रात दुआ करते हैं, मिट्टी का ये ढेर जो तामीर करने वालों ने, मकान बनाने वालों ने ट्राली मिट्टी की मंगवाई और उसके घर के सामने कोई उन्होंने उलट दी, दुआ करते रहे इस ढेर को खुदावंद दूर कर दे, इस ढेर को दूर कर दे, मेरे घर से तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि दुआ करोगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, तो इस ढेर को मेरे दरवाजे के सामने से दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे। सारी रात दुआ करते रही, सुबह उठ के कहते हैं मैं तो पहले ही पता सी तो नहीं करना। खुदावंद की मर्जी के ताबे हो, अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशों से दस्तबरदार हो और ईमान रखे, नीयत नेक रख के, ईमान रख के रोजा रखें कि खुदावंद तू हमारे रोजों को कबूल करेगा। अब रोजा कैसे शुरू किया जाए ये सवाल बनता है। पहले तो एक मकसद का फैसला करना है, जी मैंने किस बात के लिए रोजा रखना है, किस मकसद के लिए रोजा रखना है, ये बड़ा जरूरी है। एक मकसद का चुनाव करें, चूज अ पर्पज, एक मकसद का चुनाव करना है। फिर उसका टाइम तय करें कि खुदावंद मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं अपनी जान को दुख तो देना चाहता हूं लेकिन मैं ट्राई के तौर पर पहले दिन सुबह से शाम तक रखता हूं। कंफर्टेबल हो, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब है कि आपका रोजा अधूरा था, अगले दिन 24 घंटे का था, क्योंकि जान को दुख देना इसमें लाजिम है। यह मकसद नहीं है कि जी थोड़े टाइम के लिए रोटी छोड़ दी और कहा जी मेरा हो गया रोजा। जान को दुख देना टाइम तय करना, पहले मकसद तय करना, फिर खुदा के साथ टाइम कमिटमेंट करना कि जी इतने वक्त से इतने वक्त का रोजा रखना, फिर खुदा को अपने मकसद और इरादे के बारे में बताना है कि खुदावंद मैं इस मकसद के लिए रोजा रख रहा हूं, अपने दिल में इरादा कर लिया और खुदा के साथ बात ही नहीं की। जरूर खुदा से शेयर करें कि आप किस मकसद और किस इरादे से रोजा रख रहे हैं, और रोजा रखते हुए कुछ खा लें। एलिया को खुदा ने कहा तू कुछ खा ले क्योंकि तेरा सफर लंबा है, तुझे 40 दिन और रात कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खा ले, रोजा रखते वक्त कुछ खा लें और फिर रोजा शुरू करें। रोजों के दौरान क्या क्या किया जाए, दुआ में ठहर कर खुदा के साथ रफाकत रखें, वक्त गुजारें खुदा के साथ, रोजा रख के जिंदगी के सारे काम कर लिए और सिर्फ भूख सही हुई है यह बात नहीं है, दुआ में ठहरें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, ज्यादा ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें। सुबह से शाम तक का रोजा है तो आप 3 से 4 वक्त मुख्तलिफ वक्त तय कर लें कि मैंने 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट मुख्तलिफ वक्तों में मैंने दुआ में ठहरना है और खुदा से उस मकसद के लिए रोजे की हालत में दुआएं करनी है। आप दौरानिया अपनी मर्जी का कर सकते हैं लेकिन दुआ में ज्यादा वक्त गुजारें, फिर खुदा के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें। जो पढ़ नहीं सकते आजकल ऑडियो बाइबल मौजूद है, आप सुन सकते हैं खुदा का कलाम, अगर घर में कोई अवेलेबल है शख्स उससे कहें आप पढ़ो मेरे लिए और आप उसको सुनो। خدا کا کلام ہماری روحانی خوراک ہے، وہ ہمارے بدن کو مضبوط کرتا، ہماری زندگی کو مضبوط کرتا، ہمیں آزمائشوں کے لیے تیار کرتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. بائبل آزمائش اور برائی کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ ہتھیار استعمال کیا تھا ابلیس آیا آزمانے کے لیے، خداوند یسوع نے کلام کو استعمال کیا. لکھا ہے اور ہمیں کلام آتا ہوگا، ہم نے سنا اور پڑھا ہوگا تو ہم اس کو استعمال میں لائیں گے. اپنی زندگی میں روح کا پھل ظاہر کریں. غلطیوں 5:22-23 آیات میں یہ 9 ایلیمنٹس لکھے ہوئے ہیں، روح کا پھل ہے، ایک پھل ہے، اس کے 9 ایلیمنٹس ہیں. جیسے اورنج میں، سنترے میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں اس کے، یہ ایک ہی پھل ہے جس کے یہ سارے حصے ہیں. اپنی زندگی میں محبت، خوشی، اطمینان، نیکی، مہربانی، تحمل، حلم، پرہیزگاری، ایمانداری، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لے کر. بیجا سہولتیں لینے سے پرہیز کرے. کام نہیں کرنا، گھر میں کچھ مدد نہیں کرنی کسی بھی طرح کی، بیجا سہولتیں نہ لے. اپنے ہم جن سے روپوشی مت کرے، یعنی انسانوں سے دور رہ کے چلے کاٹنے کی کوشش ضرورت نہیں ہے. بیجا سہولتیں نہ لے. جی ہمارا روزے چل رہے ہیں تو کام نہیں کریں گے، ذرا جلدی کام سے فارغ ہو جائیں گے. نہیں، پورا کام کرو، پہلے سے زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند کے حضور آپ فرما بردار اور وفادار. معمول کے مطابق روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھائیں، ان سے بھاگے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا یا دوسروں پر کوئی احسان کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے روزہ رکھا ہے، یا اپنے کسی عزیز کے لیے رکھا ہے. خدا پر احسان نہیں کر رہے، نہ دوسروں پر احسان کیا ہوا ہے روزہ رکھ کر. یہ آپ کا ذاتی کام ہے. روزہ کیسے کھولا جائے؟ افطاری کا وقت ہمارا، ہمیں بس ٹک 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 یاد رہتا ہے، اور جب وہ وقت قریب آ رہا ہوتا ہے دعا کرنا شروع کرتے ہیں خدا کی پرستش کے لیے. خدا کی پرستش کے ساتھ روزے کو ختم کیا، خدا کی حمد کے ساتھ روزے کو ختم کیا، خدا کی تعریف کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ روزے کو ختم کیجئے. اور بہت بھاری بھرکم کھانوں سے پرہیز کریں، بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم افطاری میں پورے 3-4-5 لوگوں کا کھانا اکٹھے سے کھا جانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے لوازمات، اتنی آئٹمس ہم ٹیبل پہ مانگتے ہیں کہ جی بس روزہ رکھا ہوا تھا نا، افطاری ہے، کیا اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں، اس سے پرہیز کریں. کیا یہ وہ روزہ نہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ جو روٹی آپ نے بچائی ہے وہ کسی ضرورت مند کے لیے محفوظ کریں. اسی لیے ہماری اردو کانگریگیشن نے، یہ روایت ہے کئی سالوں سے، کہ ہم روزوں کے سیزن میں، لینٹ سیزن میں، مٹی کے گلے یعنی منی پاٹس ہم تقسیم کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے روم میں رکھیں. آپ ان روزوں میں اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے جائیں، یہ سمجھ کر کہ میں نے ان دنوں میں جو روٹی بچائی ہے وہ اس میں ڈال دی، اور وہ پیسے وہ ہم اپنی کلیسیا میں استعمال نہیں کرتے، کلیسیا کے کسی کام میں، وہ ہم کلیسیا سے باہر انجیل کی خدمت کے لیے، ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے، جو آرگنائزیشنز ہیں بحرین میں کام کرتی ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں. ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے اس میں سے پیسہ دیا جاتا ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس سیزن میں جب گلے آپ کے پاس آ چکے ہیں یا آپ نے ابھی نہیں لیے، عبادت کے بعد وہ ضرور آپ چرچ کمیٹی کے ممبر سے ضرور حاصل کیجیے، اور ان میں اپنا وہ پورشن، اپنا وہ شیئر، اپنا وہ حصہ ڈالیے. کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ روزے میں جو تم نے کھانا بچایا ہے وہ کسی محتاج ضرورت مند کو دے. وہ کیا تو یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. خداوند ہمیں گھیر لے گا، خداوند ہمیں محفوظ کر لے گا، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا. ہم روزوں میں خود ہی نہ کھا جائیں بعد میں سارا کچھ، ہم دوسروں کی مدد کے لیے ان گلوں میں پیسے ڈالیں. اور پھر ایمان رکھنا ہے ہمیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ملے گا. خداوند جو ہمارے لیے بہترین چوز کرتا ہے وہی ہمیں بخشتا ہے. جو چنگا ہے سو دے گا یہوہ بل یقین. زبور 85 میں ہم گاتے ہیں، کہ خداوند وہی دے گا جو اچھا ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہے، خداوند وہ ہمارے لیے چنتا ہے۔ خداوند زبور 16 میں ہے، جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں رکھی ہے، تھاں ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا، وہ ہے جگہ سونی، ستھرا حصہ میرا۔ یہ قبر کی بات نہیں ہوتی، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر کے جو پیمائش ہے میرے لیے وہ جگہ ناپی گئی ہے، نہیں، آسمان پر جو میراث ہے، خداوند نے زمین پر جو ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں ہماری ترقی کی اور برکت کی، وہ ہیں دل پسند جگہیں، ان میں ہمارے لیے جریب یعنی ناپنے کا پیمانہ رکھا گیا ہے۔ آؤ ہم ان روزوں کو جب آبزرو کرتے ہیں خدا کے کلام کی روشنی میں آبزرو کریں، یہ جان کر ان کے ذریعے سے خداوند جلال پائے اور ہم روح میں اس کے ساتھ بھرتے چلے جائیں، اور وہ ہماری فریادوں کو سن کر ہمیں برکت دیتا رہے۔